मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 2 अगस्त 2017 के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग मुख्य विषय के रूप में अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स कह लीजिए, अर्थव्यवस्था पर हम बात नहीं करेंगे, इकोनॉमी पर बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी अर्थशास्त्र पर बात करेंगे, राइट। और वह होगा बैंकों ने, अभी आपने देखा है, कल न्यूज में सुनी भी है कि अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, परसों की बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो करंट अकाउंट है उसके ब्याज की दरें घटा दी है, तो मैं इस पर बात करूंगा। और इस पर इस नजरिए से भी मैं बात करना चाहूंगा कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, चाहे फिर वो प्री की तैयारी हो, चाहे फिर वो मेन की तैयारी हो, सच पूछे तो कैसे करनी चाहिए, यह मैं आपको इसी इवेंट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा, बशर्ते कि आपको इसकी जरूरत हो। तो दोस्तों आइए उससे पहले हम कुछ दूसरे न्यूज पर बातें कर लेते हैं। दूसरी न्यूज में मित्रों, एक खबर आपने सुनी, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट हैं, प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कुछ राज्यों की मीटिंग ली, और आपको मालूम है कि अभी असम कितने जबरदस्त रूप से बाढ़ के संकट से जूझ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी हमारे गए वहां, उन्होंने सर्वे किया, फिर मीटिंग ली, और मीटिंग लेने के बाद 2350 करोड़ रुपए उन्होंने जारी करने की बात कही। यह एक घटना है। अगर आपने डीडी न्यूज सुना हो तो आपने देखा होगा कि जो हमारे असम के जो मुख्यमंत्री थे उनका लाइव टेलीकास्ट था, उनसे प्रश्न पूछा जा रहा था, तो उसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की जो समस्याएं हैं और उसके लिए अभी सरकार जो कदम उठा रही है उनकी कुछ बातें की थी। हालांकि उन्होंने उनके केंद्र में ये असम में जो अभी बाढ़ आया है उसी को लेकर थे। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि असम के मुख्यमंत्री ने जब इस बाढ़ की शुरुआत हुई थी तब एक बात कही थी कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुछ हिस्से, कुछ दूर जाकर के एक सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं तो एक ऐसी दीवाल सी बनाना चाहते हैं जिससे कि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। वह एक योजना है, लेकिन अभी वह कागज के रूप में नहीं आई है, योजना के रूप में अभी वह हमारे पास उपलब्ध नहीं है, अदरवाइज वो बहुत बड़ी योजना है, उसमें काफी बड़ा खर्चा है, खैर वो एक अलग बात है। यहां मैं जो स्पेशली आपसे जो कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, कि मैंने ये महसूस किया है कि नई सरकार के आने के बाद से, शुरू से आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के विकास को तरजीह दी जा रही, कुछ ज्यादा तरजीह दी जा रही, ज्यादा का मतलब ये नहीं कि उनकी जरूरत नहीं है और तरजीह दी जा रही है, नॉट एट ऑल, मतलब इतनी ज्यादा तरजीह या कह लीजिए राष्ट्र का ध्यान उनके विकास पर उतना नहीं था, अब उसमें थोड़ा सा इजाफा आया है, वो प्रोमिनेंट उसमें आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनके विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है। आपने बीच में सुना अभी असम अरुणाचल के को जो रास्ता कम करने के लिए एक नदी जो भूपेन हजारिका के नाम पर है, नदी सेतु बनाया गया ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर, कुछ दिनों पहले ही आपने सुना। इसके बाद सड़क का एनएच का राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किया गया है, वो बनाया जा रहा है। आपने देखा कि म्यांमार के शहर से लेकर के और इधर असम के एक नगर को जोड़ने की कोशिश हो रही है, रेलवे मार्ग बनाए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, तो ये सब वो उपाय हैं जो नॉर्थ ईस्ट के विकास में के लिए डेफिनेटली एक प्रकार से रामबाण का काम करेंगे। तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो दूसरी खबर है फ्रेंड्स, वो है जो मोनेटाइजेशन जो किया गया था, नोटबंदी। अब सरकार कहने लगी है, हमारे वित्त मंत्री जी ने भी कल के न्यूज में आपने सुना कि कहा है कि अब नोटबंदी के जो फायदे हैं वो दिखाई देने लगे हैं। देखिए, आर्थिक जगत में अभी दो बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं, बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। एक अभी हम बात कर रहे हैं मोनेटाइजेशन की, और दूसरा है जीएसटी। ये दोनों क्रांतिकारी कदम हैं, जिस तरीके से उठाए गए वो भी क्रांतिकारी हैं। देखिए, नोटबंदी तो इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको किया गया वो एक बहुत क्रांतिकारी, मतलब एक तरह से इस तरह का कदम था जो अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते कि उसको ठीक से फॉलो किया गया हो। तो नोटबंदी के मामले में थोड़ी सी गड़बड़ियां हुई कि लोगों ने पैसे अलग अलग तरीके से जमा करने शुरू कर दिए, तो सरकार जो मान के चल रही थी कि इतना काला धन बैंकों में वापस नहीं आएगा वो ले दे करके पहुंच गया, बहुत कम रकम ही नहीं आ पाई है, तो वो एक उसका फेलियर जरूर रहा, लेकिन इसके फ्यूचर इम्पैक्ट बहुत अच्छे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे वित्त मंत्री जी ने कही, वो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाज होते हैं इनकी इवेंट इस तरह की घटनाओं में कमी आई है, क्योंकि अब उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है, धन नहीं है। नक्सली गतिविधियां भी थोड़ी कम हुई हैं, क्योंकि अब उनके पास भी जो काला धन पड़ा हुआ था वो बेकार हो गया है, तो वहां भी फर्क पड़ा है। आतंकवादी गतिविधियों पर भी इसका अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी कि आतंकवादी गतिविधियां भी कम हुई हैं, तो इस तरह के पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देने लगे हैं। तो दोस्तों, ये जो दो टॉपिक हैं ये सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये इकोनॉमी का हिस्सा, इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं है, है ना, ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स है जो हम देख रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इनके क्या प्रभाव पड़े हैं इस पर आपकी तर्कपूर्ण तैयारी होनी चाहिए, सुपरफिशियल तैयारी नहीं। इसके बाद मित्र, एक छोटी सी जो खबर है वो अरविंद पनगढ़िया जी को लेकर के है, जो हमारी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। उनका टर्म 31 अगस्त टर्म नहीं, वो जनवरी तक रहते, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में मानी जाती है, वहां वो इससे पहले प्रोफेसर थे, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनका जो एक्सटेंशन है इससे ज्यादा करने से मना कर दिया है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि अब उन्हें पदमुक्त किया जाए और वो अपने उस एकेडमिक लाइफ में लौटना चाहते हैं। अब आप अगर अरविंद पनगढ़िया जी के इस घटना को देखेंगे तो अखबारों में आपको बड़ी अलग अलग चीजें दिखाई देंगी, बिल्कुल अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। कुछ अखबारों ने लिख दिया है कि सरकार के साथ नहीं बन रही है, कुछ ने लिखा है कि आरएसएस के आर्थिक नीतियों से ये सहमत नहीं हो पा रहे हैं, इधर उधर की बात की हुई है। रेडियो में उसे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया कि सुनाया गया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको एक्सटेंशन और देने से मना कर दिया, उनकी छुट्टी बढ़ाने से मना कर दिया, और चूंकि वही उनको पसंद है, उनका अपना क्षेत्र है, वहां उनको अच्छा लगता है। एकेडमिक फील्ड तो मित्रों होता ही ऐसा है कि जिसको रास आ गया तो बस फिर वो उसी में डूबा रहता है, क्योंकि इसके सुख को मैं जान सकता हूं, समझ सकता हूं, क्योंकि उसका रस मैंने न केवल लिया ही है बल्कि मैं आप सबके साथ मिलकर के रोजाना ले भी रहा हूं, तो वो उसी में लौटना चाहते हैं। मित्रों, ये तीन ही खबरें थी जिसे हम सिविल सर्विस की दृष्टि से महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो आइए अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं, लेकिन मुख्य विषय से पहले मैं आपको फैक्ट्स ऑफ द डे बता दूं कि आज का क्या एक प्रमुख तथ्य है। मित्रों, अभी एक वर्ल्ड प्रोग्राम हुआ है, वैश्विक स्तर का कार्यक्रम हुआ है, जिसका नाम है फेज प्लान ऑफ एक्शन। रिफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं और आपको ये रिफरेंस बल्कि नोट भी कर लेना चाहिए। इसमें हमारे संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनिया गुतेरस, नाम आपको मालूम होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस, कहीं गुटेरेस भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा लेकिन ज्यादातर गुतेरस नाम मैंने पढ़ा है, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। और चूंकि देखिए वो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उनके कहे हुए का एक बहुत बड़ा वजन है, मैं उनकी कही हुई बात आपको बता रहा हूं और ये आप बहुत जगह काम में ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो धार्मिक हस्तियां हैं, मैं जो अखबार में छपा है आपको ज्यों का त्यों पढ़कर सुना दे रहा हूं, वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना, कि धार्मिक हस्तियों की तकरीरें, उनके आचरण की मिसाल और धार्मिक मामलों पर उनकी विशेषज्ञता दुनिया भर में नफरत व हिंसा को रोकने में अहम भूमिका निभा सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूं मित्रों कि धार्मिक हस्तियों की तकरीरें, उनके आचरण की मिसाल और धार्मिक मामलों पर उनकी विशेषज्ञता दुनिया भर में नफरत व हिंसा को रोकने में अहम भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके आपको बताता कि हमारे अपने ही समाज की, चाहे वो फैमिली प्लानिंग जैसी ही समस्या क्यों न हो, किस तरीके से उनको सुलझाने में उसको सफल बनाने में फैमिली प्लानिंग को मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये फैक्ट ऑफ द डे था। अब मैं आता हूं बचत खातों पर ब्याज दर में कमी। फ्रेंड, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो देखिए मैंने कल भी आपको पनामा पेपर लीक्स के माध्यम से बताया था कि आप कैसे उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। जैसे रिजर्व बैंक आपके सॉरी स्टेट बैंक ने कहा कि वो ब्याज बचत खाते के ब्याज दर में कमी करने जा रही है, और अब तक 4% था बचत खाते पर ब्याज की दर, अब वो 3.5% कर रही है, 0.5% कमी ला रही है। अब आप क्या करेंगे जैसे सिविल सर्विस की तैयारी करने के एस्पायरेंट होने के नाते, क्या आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे छोड़ देंगे, या अखबारों में उसके बारे में जो कुछ भी आया है थोड़ा सा पढ़ लिया और भूल गए, क्या करेंगे आप? अब आपको चाहिए ये कि आप इसके पूरे के पूरे एनवायरमेंट को देखें और इसे समझने की कोशिश करें। समझने की कैसे कोशिश करें, अब आपको मैं एंगल्स बता रहा हूं। जैसे सेविंग अकाउंट, बचत खाता, ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट खाते होते हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, चालू खाता जिसे हम कहते हैं, करेंट अकाउंट हिंदी में इसको चालू खाता कह रखा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज सेविंग अकाउंट और व्हाट इज करेंट अकाउंट, राइट। मैं यहां आपकी जानकारी के लिए केवल इतना बता दूं कि जो बचत खाता है ज्यादातर हम लोग खोलते हैं, जिसमें हम जो भी पैसा हमारा बचता है वो हम उसमें जमा कर देते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर हम निकालते रहते हैं, है ना। एक मिनिमम हम उसमें मेंटेन करके रखते हैं कि हमारा इतना पैसा उसमें होना ही चाहिए जो बैंक चाहते हैं, फिर हम जब चाहे निकालते रहें करते रहें, है ना। लेकिन ये नहीं है कि हम एक महीने में 20 बार निकालते रहेंगे, डेली निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, खासकर बचत खाते में, राइट। दूसरा है करेंट अकाउंट। जो करेंट अकाउंट है ज्यादातर बिजनेसमैन खोलते हैं, कंपनीज बिजनेसमैन खोलते हैं, इसमें आप पैसा जमा करते हैं, मिनिमम एक आपको रखना ही पड़ता है, और इसकी सबसे बड़ी दो खासियत होती है। नंबर वन, जो सेविंग से अलग है, पहला तो यह है कि इसमें जितना आपका पैसा जमा है, जान मान लीजिए कि मेरा 2 लाख रुपए उसमें मेरे जमा है, ठीक है, तो मैं 2 लाख से ज्यादा भी निकाल सकता हूं। अगर मुझे मान लीजिए कि 2.5 लाख की जरूरत पड़ गई, 50,000 रुपए की ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा, तो बैंक मेरी कैपेसिटी निर्धारित कर देंगे कि इस व्यक्ति की साख को देखते हुए और बाकी चीजों का मूल्यांकन करके इसको अगर जरूरत पड़ेगी तो 50,000 रुपए तक हम ज्यादा दे देंगे, तो मैं अपने 2 लाख निकाल सकता हूं और 50,000 भी निकाल सकता हूं। नो डाउट कि मुझे अपने इस 50,000 पर बैंक को ब्याज देना होगा, जो आप बचत खाते में नहीं कर सकते। बचत खाते में आप अपनी जमा राशि से ज्यादा नहीं निकाल सकते, पहला अंतर। दूसरा जो मेजर अंतर है वो ये है कि करंट अकाउंट में जो आपका पैसा जमा है उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा, जो पहले 4% मिलता था अब वो घटाकर 3.5% कर दिया गया है। करंट अकाउंट में आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कोई ब्याज करंट अकाउंट में नहीं मिलेगा, राइट। करंट अकाउंट में आप कितनी भी बार जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन बचत खाते में आप ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में रोजाना निकालते रहे, तो इसीलिए जो बिजनेसमैन, चूंकि उनको तो उनके तो रोजाना का काम पड़ता रहता है, तो करंट अकाउंट खुलवाते हैं, राइट। भारत में या कह लीजिए जो आम नागरिक होता है, बट नेचुरली कि वो सेविंग अकाउंट खोलता है। सेविंग अकाउंट को खोलना भी आसान है, यानी बड़े आसानी से आपका खुल जाता है, जो भी बैंक की सामान्य रिक्वायरमेंट है आप दे दीजिए, आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। तो ज्यादातर लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो अब आप देखिए कि इसको अब जो आपका अलग एंगल होगा, एक तो आपने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के अंतर को समझ लिया, मेजर समझ लिया, अब आप इकोनॉमी को समझ रहे हैं, राइट, उसके बैंकिंग वाले पार्ट को समझ रहे हैं। अब इसका दूसरा एंगल होगा कि बैंक ने जो ब्याज दर कम किया है इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, राइट। और जब आप इंपैक्ट की बात करेंगे तो इंपैक्ट पर देखिए फिर दो वर्ग आएंगे, सीधे सीधे दो वर्ग आ जाएंगे। इंपैक्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही होगा कि जिसने खाता खोला हुआ है, यानी कि कस्टमर, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कस्टमर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो आपको देखना ही है। और कस्टमर का इंपैक्ट ये पड़ेगा कि उसको मिलने वाला ब्याज दर कम हो गया, मतलब उसको जो ब्याज मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि मेरा 1,00,000 रुपए जमा है और उस पर मुझे 4,000 रुपए, उस पर मुझे 4,000 रुपए मिलते, तो अब मुझे 3,500 रुपए मिलेंगे, खत्म हो गई बात, ठीक है, कम हो गए मेरे 500 रुपए तो कम हो गए, तो मेरी आय कम हो गई। तो इसका इम्पैक्ट एक ये हो सकता है कि मैं अब अपने बचत खाते में पैसा ज्यादा रखना पसंद नहीं करूंगा, या मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं कोई और दूसरे तरीके निकालूंगा, तो बैंकों के पास जो बचत खाते का जो अमाउंट होता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक में जो हम बचत खाता खोलते हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल, जो हमारा पैसा है उसका तो बैंक फिर लेन देन के लिए करती है, वो रखी थोड़ी रहती है बैंक रखा नहीं रहता उसको, उसका इस्तेमाल करती है वो। ये एक इम्पैक्ट हो सकता है। और मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग ही चूंकि बैंक एक बचत खाता खोलता है तो इस तरह एक तरीके से उनकी आय कम हो जाएगी, ये इम्पैक्ट हो गया। दूसरा, इसका बैंकों पर क्या इम्पैक्ट होगा? बैंकों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, बैंक अभी बहुत संकट से गुजर रहे हैं, उनका दुनिया भर का कर्ज डूब गया है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे में उनकी थोड़ी सी आमदनी बढ़ेगी तो बैंक थोड़े से स्ट्रांग होंगे, तो ये बैंकों को फायदा हो सकता है, राइट? तो इस तरीके से आप उसको इन दो एंगल से देखेंगे, और फिर टोटल इकोनॉमी के एंगल से भी देख सकते हैं कि पूरे देश में क्या होगा। तो पूरे देश में ये हो सकता है कि देखिए कि हमारे बचत करने की प्रवृत्ति कम हो सकती है, बचत करने की प्रवृत्ति की, भाई अब ब्याज नहीं मिल रहा है, ज्यादा कमाई नहीं हो रही है तो बचत मत करो, तो ठीक है आप खर्च करेंगे ना, चलिए खर्च करेंगे तो उससे भी फिर इकोनॉमी एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ेंगी, मतलब खर्च करेंगे तो आप बाजार में ही जाएंगे, बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, एक एंगल हो सकता है। दूसरा एंगल ये हो सकता है कि ठीक है यहां मुझे कम फायदा हो रहा है बैंक में अकाउंट में पैसा रखने से, तो मैं दूसरे क्षेत्र में पैसा लगाऊं, तो हो सकता है मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं, मैं रियल एस्टेट में पैसा लगाऊं, मैं और भी कहीं जा सकता हूं, निवेश के जो दूसरे तरीके हैं मैं उन्हें ढूंढ सकता हूं और वहां पैसा लगा सकता हूं, तो अदर जो एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर इसका यह भी प्रभाव हो सकता है। और देखिए एक बात और भी है कि जो बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो बचत खाते पर हम लोगों को दे रही हो या वो जो हम लोगों को लोन देती है उस पर हमसे ब्याज ले रही हो, उसका महंगाई से सीधा संबंध होता है। अगर मैं बैंक में अपना पैसा रखूंगा तो कम से कम बैंक मुझे कम से कम उतना ब्याज देगा ही, देना ही चाहिए, अगर नहीं देता है तो फिर मैं बैंक में पैसा नहीं रखूंगा। जितनी महंगाई दर बढ़ जाती है, मैं यहां फिर से अपने क्लास स्टूडेंट को याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि बैंक के इस वर्किंग पैटर्न को मैंने बहुत विस्तार के साथ आपको क्लास में समझाया था, याद करने की कोशिश कीजिए, बस उस लेक्चर को आप यहां अप्लाई कर दीजिए, देखेंगे कि ये इस टॉपिक की परत दर परत आपके सामने खुलती चली जाएगी, बस आपको थोड़ा सा उसे याद करना होगा। तो महंगाई दर अगर अधिक होगी और बैंक का बचत खाते की दर कम होगी तो फिर बचत बैंक में लोग अकाउंट में पैसा रखना पसंद नहीं करेंगे। तो एक ये भी शो कर रहा है कि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि महंगाई पर नियंत्रण है, और बैंक अगर अभी 3.5% ब्याज भी दे रही है तो महंगाई के कारण हमारी मुद्रा की जो कीमत कम होगी उसको मीट आउट कर ले रही है। तो यह रैशनल भी है, तार्किक भी है। अब आप देखिए फ्रेंड्स की एक छोटी सी सूचना थी या खबर थी कि स्टेट बैंक ने बचत खाते पर ब्याज की दर में 0.5% की कमी कर दी है, ये आपने सुना। लेकिन सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एक जो सतर्क स्टूडेंट होगा वह फिर इसको एनालाइज करेगा, इसको समझने की कोशिश करेगा कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। इनफैक्ट तब जाकर कहीं सिविल सर्विस की तैयारी सही तरीके से हो पाती है। तो मित्रों, यह मुख्य विषय के बारे में कुछ बातें थी। अब मैं आता हूं अगले चरण पर, जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का चरण है। मित्रों, मैं काफी क्लिपिंग्स आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे, उसमें 2-3 क्लिपिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उन्हें आप मिस न करेंगे। अब अंतिम चरण है दोस्तों, और यह अंतिम चरण है अपने नौजवान साथियों का स्वागत करने का चरण। तो मैं स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं कंचन यादव, आप फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, कपिल पारवाल, आप रतलाम मध्य प्रदेश से हैं, लाल बहादुर मौर्य, आप जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और विकास मौर्य, आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।